ਫਸਲ ਕੀਰਤਨਾ ਹਰਿ ਯੁਗ ਕੀ ਜਾਇ, ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਮੰਤਰ ਕੀ ਜਾਇ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜਾਇ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਗੋ ਸਵਾਮੀ ਗਨ ਕੀ ਜਾਇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਕੀ ਜਾਇ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਕੀ ਜਾਇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜਾਇ, ਅਨੰਤ ਕੋਟਿ ਵੈਸ਼ਨਵ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੀ ਜਾਇ। ॐ ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्वयं रूप कदा मह्यं दाति स्वपदान्ते, गुरु श्री उद्धव सहगना रघुनाथ श्री राधा कृष्ण पदा जगतपति गोपेश गोपी तप्त कांचन गौरामी हरि अपॉर्चुनिटी है। हरे कृष्ण। थोड़ा सा हम इस शक्ति तत्व को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आप सभी से निवेदन है आप कृपा करके जो कुछ भी कहें इन बातों को ध्यान से समझ लीजिए। देखो, प्रायः संसार में जब हम तथ्यों को समझते हैं तो हमारा जो रेस्पॉन्स है वो अलग हो जाता है, और जब हम तथ्यों को नहीं समझ पाते, अज्ञानता में हमारा जीवन जब हम जीते हैं, तो हमारा परिस्थितियों के प्रति जो रेस्पॉन्स है वो अलग किस्म का होता है। एक ही चीज को लेकर के, उदाहरण के लिए जैसे पुलिस है, तो हमें संसार में पुलिस के संपर्क में आ जाते हैं देखने में, रोड्स पर पुलिस हमें आम रूप से दिखाई देती है। आप देखेंगे कई सारे डिपार्टमेंट्स के बड़े बड़े ऑफिसेस होते हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के इतने बड़े ऑफिस नहीं होते। पुलिस डिपार्टमेंट को ज्यादातर एक ही काम दिया जाता है कि आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। इसलिए आपको बैठना कम है, घूमना ज्यादा है। तो गाड़ियों को लेकर के प्रायः पुलिस घूमती रहती है कि कौन उसके लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक कर रहा है, कौन फॉलो कर रहा है। तो प्रायः हम लोग पुलिस के संपर्क में जब आते हैं ये सब पहले ही अरेंजमेंट करके रखना चाहिए। जब हम पुलिस के संपर्क में आते हैं तो अंदर क्या उत्पन्न होता है? डर, भय उत्पन्न होता है। जबकि ये डर किसको उत्पन्न होना चाहिए? चोर को, जो गलत काम करता हो उसको, जो गलत कार्य नहीं कर रहा उसको डर उत्पन्न होना चाहिए क्या? उसको क्या उत्पन्न होना चाहिए? सेंस ऑफ सिक्योरिटी। उसको सेंस ऑफ फियर नहीं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगा, निर्भयता ही। ओह, हम कानून का पालन करते हैं अच्छी तरह से, अभी कोई दिक्कत नहीं पुलिस से। अलग बात है कि आजकल कानून का पालन करने वाले को भी पुलिस से डर लगता है, क्योंकि पुलिस ने अपने व्यवहार को थोड़ा बदल दिया है। पुलिस का काम कानून बनाना नहीं है, पुलिस का एक ही काम है कानून को पालन कराना लोगों से, ये इनके इन प्रकार। तो वही पुलिस इन द कॉन्टेस्ट ऑफ गवर्नमेंट, जब हम ये देखते हैं कि ये पुलिस गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट ने कुछ कानून दिए हैं हमें फॉलो करने के लिए, और जब हम उन कानून को फॉलो कर रहे होते हैं तो उसी पुलिस को देख करके हमारे पास सिक्योरिटी की फीलिंग आ जाती है। और जब हम गवर्नमेंट के कॉन्टेस्ट में नहीं देख पाते उसको, इंडिपेंडेंटली एक एंटिटी के रूप में देखने का प्रयास करते हैं, और जब गवर्नमेंट को ही हम नहीं जानते, गवर्नमेंट का रिलेशन पुलिस के साथ नहीं जानते, उस स्थिति में हम गवर्नमेंट के फॉलो करने के, लॉज को फॉलो करने की संभावना हमारी कमी होती है। उस स्थिति में हम फॉलो कर नहीं पाते, परिणाम में पुलिस से क्या लगता है? डर लगता है। तो पुलिस एक व्यक्ति को डरा रही है और पुलिस एक व्यक्ति को निर्भयता प्रदान कर रही है। जैसे हिरण्यकश्यपु है, नरसिंह भगवान को जब वो देखता है तो नरसिंह भगवान उसको अपने हाथों से उठा करके अपनी जंघाओं पर लेटा लेते हैं और जंघाओं पर लेटा करके उसको चीर फाड़ कर देते हैं, उसकी आंतों को अपने गले में डाल लेते हैं। उसी जंगल के ऊपर उन्होंने 5 साल के एक बालक प्रहलाद को भी बिठाया हुआ है और उसको अपने हाथों से क्या कर रहे हैं? उसके सर पर हाथ घुमा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। जंगा किसकी है? नरसिंह देव की। एक ही जंगा है, एक व्यक्ति को जंगा पे बिठाया नहीं, लिटा ही दिया, लंबा ही कर दिया पूरा, और लंबा करके पूरा चीर फाड़ करके उसको गले में डाल, और एक व्यक्ति उसको उसी जंगा पर बिठा करके क्या कर रहे हैं? प्रेम कर रहे हैं, वही नरसिंह स्वरूप है उनका, तो भी उसको प्रेम कर रहे हैं। जंगा समान है लेकिन दो अलग अलग लोगों के साथ व्यवहार अलग अलग है। क्यों ऐसा? क्यों? हाथ भी वही है, हिरण्यकश्यप के लिए इतने भयावह हैं और प्रहलाद महाराज को निडर बना रहे हैं, वही हाथ। क्योंकि वो जो जंगा है वो भगवान के सत्ता के रूप में कौन देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं? प्रहलाद महाराज। ये भगवान की सत्ता है, हम भगवान के कानूनों को पालन कर रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। और जो हिरण्यकश्यप है वो तो जानता है कि जंगा क्या है, भगवान कौन है, मैं ही क्या हूं, भगवान हूं। उसने भगवान की सत्ता को हटा दिया, उसको क्या होना पड़ा, लंबा होना पड़ा, लेटना पड़ा, चीर फाड़ हुई, बर्बाद हुआ, वही हाथ वही जंगा। ऐसे ही हम इस शक्ति तत्व को थोड़ा सा आज समझने की चेष्टा करेंगे। जो लोग शक्ति तत्व को, माता दुर्गा को, भवानी को, चंडी को सही कॉन्टेक्स्ट में नहीं जानते, उनको ये माता दुर्गा त्रिशूल के द्वारा लंबा कर देती है। और जो इनको सही कॉन्टेक्स्ट में जान जाता है उसी को ये माता दुर्गा, जिनका नाम महामाया भी है, यही महामाया कृष्ण अनुजा, कृष्ण की बहन के रूप में योग माया के रूप में काम करने लग जाती है और उसको प्यार करने लग जाती है, उसको भगवान के नजदीक ले जाती है। तो हम इनको किस प्रकार से अर्चना करें, किस कॉन्टेक्स्ट में हम इनकी आराधना करें, इनको समझते हुए ये बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। चल जाएगा आज कि नहीं चलेगा? नहीं चल रहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पहले चेक नहीं किया था इसको, लगा के किया तो चल रहा था, अभी क्यों नहीं चल रहा? तो इस कॉन्टेक्स्ट को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि माया तत्व तो क्या है। आप शायद जानते हो या न जानते हो, दो प्रकार के जगत होते हैं, एक आध्यात्मिक जगत, एक भौतिक जगत। भौतिक जगत जो यहां से ब्रह्मलोक तक जाता है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। इन ब्रह्मांडों से परे आध्यात्मिक जगत का आरंभ होता है, जो ब्रह्म ज्योति से आरंभ होते हुए वैकुंठ जगतों को पार करता हुआ, अयोध्यापुरी को पार करता हुआ, द्वारिकापुरी को पार करता हुआ, मथुरापुरी और गोलोक वृंदावन धाम तक एग्जिस्ट करता है। जैसे नीचे पाताल लोक से भूलोक, भूवर लोक, स्वर्ग लोक, जन लोक, महर लोक, तप लोक, सत्य लोक तक, अर्थात ब्रह्म लोक तक पाताल लोक से एक ब्रह्मांड होता है, उस ब्रह्मांड को भौतिक जगत कहते हैं। कौन सा जगत? और इससे परे आध्यात्मिक जगत होता है। तो जो भौतिक जगत है जिसको कि दुर्ग कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दुर्ग। दुर्ग माने किला, दुर्ग माने जिसमें प्रवेश करना भी बहुत मुश्किल होता है और निकलना भी मुश्किल होता है। जो इस दुर्ग को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इंचार्ज करते हैं, उनका नाम क्या है? दुर्गा। उनका नाम क्या है? दुर्गा। अर्थात दुर्ग को किला, दूसरे शब्दों में इसको जेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेल। तो जो जेल है, उस जेलर का जो, उस जेल का जो इंचार्ज होता है उसको क्या कहते हैं? जेलर। क्या कहते हैं? तो अगर ये संसार जेल है तो इसकी जेलर कौन है? दुर्गा माता। तो उनके पास कुछ गन्स वगैरह होंगे कि नहीं होंगे? खाली ऐसे बैठे रहेंगे? तो आठ भुजाओं में बड़े अस्त्र शस्त्र के साथ इस किले को बड़ी अच्छी तरह से देख रेख करती है और इसको ये इनके प्रकारें इसमें देखती है कि लोगों को पर्याप्त तो उनके कर्मानुसार इस जेल में पनिशमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। समझ में आया? इसलिए इस दुर्गा माता को महामाया भी कहा गया। ये साधारण नहीं, इनके पास अपार शक्तियां हैं, कोई व्यक्ति अपनी चेष्टा से इनको कभी पार नहीं कर सकता। इसको भगवत गीता के सातवें अध्याय में भगवान वर्णन कर रहे हैं। आप ही कहो, दैवी हे शाम गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायां एतां तरन्तिते। बोले मेरी जो शक्ति है, ये जो माया शक्ति है, जो दुर्गा के नाम से जानी जाती है, चंडी के नाम से जानी जाती है, शैलजा पुत्री के नाम से जानी जाती है, भवानी के नाम से जाती है, इसके भी बहुत सारे नाम है, कृष्ण अनुजा वैष्णव वैष्णवी, इन सब नामों से जानी जाने वाली ये किसकी शक्ति है? बोले मेरी शक्ति है। कैसी है ये? साधारण हमारी आपकी जैसी नहीं है, जो सीमित हो, ये दिव्य शक्तियों से युक्त है। दैवी हेशाम गुणमयी, तीन गुणों वाली है, अर्थात तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। इन तीन गुणों को धारण करने वाली ये दैवी शक्ति है। साधारण दैवी हेशाम गुणमयी मम माया, किसकी माया? ये भगवान श्री कृष्ण की माया। और बोले इसको कोई पार कर सकता? बोले असंभव, दुरंत है, कोई सोच भी नहीं सकता। हम इसकी शक्तियों का अनुमान भी नहीं लगा सकते, ऐसी असंभव शक्तियां इनके पास है। ये इस जगत में जीवों को सही ठिकाने लाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये समुद्र के अंदर से विस्फोट करा सकती है, ज्वालामुखी फाड़ सकती है, और ये पहाड़ों में बाढ़ भी ला सकती है। आपके केदारनाथ बद्रीनाथ में पहाड़ है, कितनी भयानक बाढ़ आ गई पहाड़ों में, कोई सोच सकता है? पहाड़ों में बाढ़ आ गई, समुद्र अपनी सीमाओं को कभी लांघता नहीं है, लेकिन सुनामी आदि के द्वारा ये होलसेल में भी इकट्ठा करके समा सकती है। थोड़ी देर के लिए बोले लांघ जाओ, कोई बात नहीं, इन सबको पनिश करना है। तो वही महामाया, वही दुर्गा बोले इनको आप अपनी सामर्थ्य के द्वारा पार नहीं पा सकते। जो भौतिक संसार को नियंत्रित करती है, जो भौतिक संसार को ही कोई नहीं समझ सकता, ये इतने विस्तार में फैला हुआ है, इतनी चमत्कारिताओं से भरा पड़ा है, ये संसार की इतनी अनंत सीमा है कि हम अनुमान इस संसार का ही नहीं लगा सकते। अचिंत्य संसार है ये, ऐसे ऐसे ग्रह हैं जिनकी की प्रकाश अभी तक हम तक पहुंचा ही नहीं, इतनी ऊंचाई है इस संसार की, कोई सीमा ही नहीं था। लेकिन इस संसार में हम सभी फंसे हुए जीव हैं। कैसे हैं? किसमें फंसे हुए हैं? संसार को किसके साथ कंपेयर किया था? जेल की तरह। किसकी तरह? लेकिन दुर्भाग्य उस कैदी का समझो, उस कैदी को कैसा कैदी कहेंगे जो कैद में जा रहा है और कह, अरे मेरा मोबाइल ला के देना, भूल गया मैं उसको, मेरा वो शर्ट पैंट भी ला करके देना, मेरा एटीएम भी दे देना, मेरा सब कुछ दे दो। बोले मैं जेल में क्या करने जा रहा हूं? बोले सेटल होना है। जेल में क्या होना है? सेटल होना है। कोई संसार में कैदी अगर जेल में जाए और बोले नहीं नहीं मेरे को तो यही सेटल होना है, क्या कहेंगे उसको? बुद्धिमान कहेंगे या निपट मूर्ख कहेंगे? मूर्ख नहीं, निपट मूर्ख कहते हैं। हम सबकी स्थिति संसार में ऐसी है, क्या हम इस संसार से जाने का नहीं सोचते, बच करके भागने का नहीं सोचते, निकलने का नहीं सोचते, मुक्ति का नहीं सोचते? हम क्या सोचते हैं? सेटल होना है। और सेटल होने में जो कठिनाइयां आती हैं, कौन सी कठिनाइयां हैं? यहां जेल में सुखालय है क्या? जेल दुखालय है, वहां तो पनिशमेंट दिए जाएंगे। उसी को आप कंफर्टेबल बनाने का प्रयास करो तो संभव है क्या? बनाया जा सकता है क्या? कभी नहीं बनाया जा सकता। उससे तो निकलने में ही फायदा है। उस संसार में तो उसको कष्ट ही मिलेंगे। कौन से कष्ट? बोले त्रिताप, त्रिशूल मतलब तीन प्रकार का शूल, शूल माने कांटा। तीन प्रकार के कष्टों से विशेष रूप से त्रिशूल को धारण करती है दुर्गा माता, और उसको जैसे ही कोई निकलना चाहता, अच्छा तेरी ये मजा आ गई चल अंदर से, उसको त्रिशूल की नोक से अंदर घुसेड़ देती है उसको संसार। और हमको लगता है ओ दुर्गा माता कितनी दयालु है, दयालु है, ऐसा नहीं है कि वो क्रूर है, हम सिनर्स हैं, हम गलत हैं, इसलिए हमारे लिए त्रिशूल आता है। बोले हम तो उपासक हैं, उपासकों के लिए त्रिशूल क्यों आए? बोले कोई पुलिस की कितनी भी उपासना करे, रिश्वतखोरी करे, गलत है तो ये पुलिस भगवान की रिश्वतखोरी से भी ले भी लेगी और आपको फिर अंदर भी डालेगी, डंडे भी मारेगी, आपको मुक्त नहीं किया जा सकता, ये ऐसी पुलिस है भगवान की। तो माता दुर्गा त्रिशूल से जीव को कष्ट देती। अब हम अपने आप में एनालाइज करें कि हमारे जीवन में त्रिशूल से कोई कष्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आपको पता है त्रिशूल कौन से हैं? तीन प्रकार के कष्ट कौन से हैं जो माता अपने त्रिशूल से हमें देती हैं संसारी लोगों को? पहला कष्ट आधिदैविक कष्ट। कौन सा? आधिदैविक कष्ट, जो भगवान की इस रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भगवान की यूनिवर्स में जो यूनिवर्सल गवर्नमेंट चलती है उसका जो रक्षा मंत्रालय है, ये किनके पास है? दुर्गा माता के पास। एजुकेशन मिनिस्ट्री किनके पास है? सरस्वती माता के पास। फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास है? लक्ष्मी माता के पास। महिला सशक्तिकरण जरूरी है ना, यूनिवर्सल गवर्नमेंट से ही चला रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसलिए भारत में माताओं की थोड़ी अधिक पूजा की जाती है, माताओं को सम्मान अधिक दिया जाता है। तो इनके पास रक्षा मंत्रालय है, इस रक्षा मंत्रालय के द्वारा सभी देवताओं के माध्यम से रूल करती हुई, कंट्रोल करती हुई उनके सब अधिकारी हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होकर के सबको आदेश देती है इनको इन तीन प्रकार से कष्ट दो। पहला होता है आधिदैविक कष्ट, जो देवताओं के द्वारा अधिक गर्मी, अधिक सर्दी, बाढ़, तूफान, भूकंप आदि इन सब चीजों के माध्यम से दिया जाता है, इसको कौन सा कष्ट कहते हैं? आधिदैविक कष्ट। दूसरा कष्ट होता है अधिभौतिक कष्ट, जो दूसरे जीवों के द्वारा प्रदान कराया जाता है, ये भी माता के एजेंट होते हैं जो हमें कष्ट देते हैं। बैठे अचानक से मक्खी बार बार नाक पर आके बैठ रही है, वो दूसरा जीव हमें कष्ट दे रहा है, हमारे पड़ोसी हमें कष्ट देते हैं, रिश्तेदार हमें कष्ट देते हैं, संसार में मक्खी मच्छर सांप आदि, मच्छर के ऊपर तो पूरी इंडस्ट्री चल रही है, मच्छरदानी बनाने के लिए, कॉइल्स बनाने के लिए, ऑल आउट आदि बनाने के लिए, एक मच्छर को बना करके माता के माध्यम से हमें कितने कष्ट मिलते हैं। इसे कौन सा कष्ट कहते हैं? आदि भौतिक, जो दूसरे लोगों के द्वारा हमें, दूसरे जीवों के द्वारा हमें कष्ट दिए जाते हैं। मिलते कि नहीं आपको? इसका मतलब कहीं ना कहीं हम भी गलत हैं या नहीं है? तीसरा कष्ट दिया जाता है उसको कहते हैं आधिदैविक कष्ट। कौन सा? आधिदैविक। आधिदैविक हुआ नहीं क्या ये? फिर आपने कैसे सर हिला दिया? हाँ आधिदैविक, देवताओं द्वारा अभी बता दिया, पहला ही बताया हमने। तीसरा कौन सा होगा? आधिभौतिक कष्ट। कौन सा? दूसरा, तो जागो थोड़े से। दूसरा आधि भौतिक, तीसरा आधि आत्मिक, जो हमारे ही इस शरीर और मन के द्वारा हमें प्राप्त होता है। कौन सा कष्ट कहते हैं? हमारा ही शरीर और हमारा मन हमें कष्ट देता है, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। कई बार जब होने लगता है तब पता चलता, ओ पेनक्रियाज काम करना बंद कर दिया आपका, तो पता चलता अच्छा पेनक्रियाज भी है क्या हमारे अंदर। जिस दिन ठोकर लगती तब पता चलता अरे पैर में नाखून भी है जो पलट गया है, इतना भयानक कष्ट दे रहा है। तो संसार में हम जीवों को बहुत सारे कष्ट अपने ही शरीर से और अपने ही मन से प्राप्त होते हैं, इन्हें आदि आत्मिक कष्ट कहते हैं। तो माता देवी त्रिशूल के द्वारा हमें कितने प्रकार से कष्ट देती हैं? कौन कौन से? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। एक स्तुति चालू हो गई, आगे बढ़ो। हमने बताया आपको भगवान की शक्ति है, किनकी शक्ति है? भगवान की दुरत्रय शक्ति है। गीता में भगवान बता रहे हैं 7.14 में, सातवें अध्याय के 14वें श्लोक में। आप लोग थोड़ा इधर आ जाए तो अच्छा होगा प्लीज। और भगवान आदेश देते हैं इस माया को कि तुम इस प्रकार से इस संसार को कंट्रोल करो, जिससे कि संसारी जीव आसानी से पार न कर सके। इनका सुधार पूरी पूरी तरह से होना चाहिए। आदि दैविक कष्ट, आदि भौतिक कष्ट, आदि आत्मिक कष्ट। आगे बढ़ो। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है, बोले कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां माया नहीं अधिकार। कृष्ण किसकी तरह है? सूर्य सम, सूर्य की तरह। माया किसकी तरह है? अंधकार। अर्थात दुर्गा माता किसकी तरह है? अंधकार, जो जीव को क्या करती है? अंधेरा करके थप्पड़ लगाती है। ये भौतिक जगत अंधेरे से भरा पड़ा है, इसलिए यहां सूर्य चंद्र अन्य लाइट्स की जरूरत पड़ती है। भगवान के धाम में किसी लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं प्रकाशित है। ये संसार में प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए संसारी जीवों के लिए कहा जाता है तमसो मा ज्योतिर्। कब तक इस संसार रूपी अंधेरे में पड़े रहोगे, अज्ञान के अंधेरे में पड़े रहोगे? निकलो यहां से, प्रकाश की ओर चलो। तो इस जेल में हम जैसे कैदी कैसे मूर्ख हैं कि हम सेटल होना चाहते हैं। क्या भला कोई कैदी कैद खाने में सेटल होने का दृष्टिकोण रखेगा? लेकिन वी आर सो फूलिश बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड एज वेल एज ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भगवान की जो शक्ति है, ये भगवान की शक्ति है, ये कॉन्टेस्ट हमें पता ही नहीं। जैसे पुलिस गवर्नमेंट की शक्ति है, हमें पता ही नहीं। इसलिए अगर उस पुलिस में हम गवर्नमेंट के नियमों का पालन करेंगे तो वही पुलिस हमें निर्भयता देगी, और वही पुलिस को अगर गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखेंगे तो वही पुलिस हम गवर्नमेंट के नियमों का पालन नहीं करने के कारण हमें डरावना बनाएगी, हम डरेंगे उसी पुलिस से। तो वही माता दुर्गा हमें डराने के लिए है, हमें दंडित करने के लिए है, क्योंकि हम भगवान के सापेक्ष में उनको नहीं देख पा रहे। और यहां कष्ट पा रहे, ऊपर से प्रार्थना करें कष्ट मत दो, हमें वस्तुएं दे दो, धन दे ही, पुत्र दे ही, भार्या दे ही, पत्नी दे ही, गर्लफ्रेंड दे ही, बॉयफ्रेंड दे ही, ट्रक दे ही, कार दे ही, दे ही दे ही दे ही। मंत्र भी इस प्रकार से बने, जिसके कारण हम मूर्ख बन जाते हैं और महामाया स्वरूप के उपासक बन जाते हैं। इन्हीं का नाम योग माया भी है, जो भगवान से कनेक्ट करती, जो भगवान के भक्तों को प्रसन्न करती। वो है बोले ये इनके पास विशेष अस्त्र है, जिसका नाम क्या है? त्रिशूल। जो कितने कष्ट देने के लिए है? कौन कौन से? आदि दैविक, जो देवताओं के द्वारा, जो हमारा वश नहीं चलता। आदि भौतिक, अभी जैसे लोग बोले एसी लगा लेंगे क्या दिक्कत है, लेकिन एसी के लिए बिजली कहां से लाओ? कोयला है ना, अब बोले कोयला खत्म हो गया, अब बिजली संकट गहरा ले जाता, सब भाग रहे इधर उधर। ये भगवान की शक्ति है, आपको दंडित करना है तो आप लाख उपाय अपने हिसाब से कर लो, नहीं चलने वाले। वो है तो बोले इसी माता दुर्गा को किस किस नाम से जाना जाता है? दुर्गा, जेलर, चंडी, काली, शारदा, भवानी, शैलजा एटसेट्रा। लेकिन ये वास्तव में क्या है? भगवान की बहिरंगा शक्ति है। जो भगवान का बाहर का जगत है, जो ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जो नियमों का कानूनों का भगवान की यूनिवर्सल गवर्नमेंट में फॉलो नहीं करते, उनके लिए जो बनाया गया जगत है उसको कंट्रोल करते हैं। यही माया शक्ति भगवान की अंतरंग शक्ति के नाम से जानी जाती है। जब वो अंतरंग लोगों को भगवान के आध्यात्मिक जगत को नियंत्रित करती है, ये माया के नाम से जाने जाते हैं। ये वास्तव में क्या कृष्ण की ही शक्ति है, कृष्ण अनुजा है। और ये संसार में जीवों को किस प्रकार के लालच के द्वारा रखती है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट, ये सब चीजें भर के जीव को संसार में ट्रैप करके रखती है। हमको लगता है ओ मेरी तो कामनाओं की पूर्ति हो रही है, जैसे पतंगा खुश होता ओ कितनी सुंदर प्रकाश है कितना शीतल होगा, और अंदर जाता और क्या हो जाता है, जल के राख हो जाता है। ऐसे हमको बहुत अच्छा लगता ओ माता दुर्गा के द्वारा तो हमें यह चीज प्रदान की जा रही है, कितनी अच्छी है माता। कृष्ण के पास तो सर पटकते रहो वो तो देते ही, नारायण तो देते ही, और ये सत्य बात है। बोले ऐसा क्यों, नारायण की शक्ति होते हुए भी नारायण देते नहीं और शक्ति दे देती, नारायण क्यों नहीं देते। बोले इसीलिए नहीं देते हमारी मूर्खता के कारण। जैसे मान लो एक शॉपकीपर है और एक पिताजी है स्वयं के, दोनों जगह कोई वस्तु मिलती हो तो हमें किसके पास लेना चाहिए, पिताजी से लेना चाहिए और शॉपकीपर से लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में होलसेलर है और एक रिटेलर है, किससे लेना चाहिए, होलसेलर से। कैसा मिलेगा होलसेलर से, सस्ता मिलेगा, बहुत सस्ता मिलेगा। और होलसेलर इत्तेफाक से पिताजी निकल आए फ्री में मिलेगा। तो मान लो कृष्ण है होलसेलर जो हमारे पिता हैं, बाकी सभी देवी देवता आदि वो कैसे हैं, रिटेलर है शॉपकीपर है, जो किससे लेके देते हैं, कृष्ण से लेकर के देते हैं। बोले ये लोग दे देते हैं, और होलसेलर जो कि हमारे पिता ही हैं, घर के ही हैं, फ्री में मिलना चाहिए, वो देते भी नहीं है, कीमत लेके भी नहीं देते, जबकि फ्री में देना चाहिए। क्यों? बोले हम मांगते हैं पिताजी कैन यू गिव मी द 555 सिगरेट, हम मांगते क्या है 555 सिगरेट, पिताजी क्या कहेंगे 555 स्लैप्स, पांच उंगलियों का थप्पड़ पड़ेगा, तीन भगा देगा। और भाई शॉपकीपर के पास जाएगा, शॉपकीपर क्या बोलेगा, पैसा है दो ले लो। जबकि पिता तो इतने दयालु हैं कि उनको वास्तव में आप अगर ठीक चीज मांगो तो आपको तो प्रार्थना भी करने की जरूरत नहीं। जैसे एक व्यक्ति था, अब हमारी समस्या यही है कि हम संसार में जो कैट खाना है उसमें सेटलमेंट मांगते, और भगवान चाहते तो मूर्खों यहां से बाहर निकलो, यहां तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरी ग्रीड के कारण हम लोग फंसेंगे। हमको लगता है ग्रीड फुलफिल हो रही है, समाज में जो एडवर्टाइजमेंट चलती है ना हम उसके प्राय शिकार हो जाते हैं। मार्केट में खरी अपने को टूथपेस्ट चाहिए, नीड क्या है, टूथपेस्ट, इतनी देर में दूसरा टूथपेस्ट पैकेट, इसमें बोले दो ब्रश फ्री है, इतनी देर में लालच आ जाए। ब्रश ऑलरेडी है घर पे, फिर भी दो ब्रश कैसे मिल रहे हैं, फ्री मिल रहे, वो टूथपेस्ट लेने लग जाएंगे। और मैक्सिमम ऐसे एडवर्टाइजमेंट के द्वारा हम क्या होते हैं, घर ला करके पता चले और फंस गए, लूट लिया उसने, लालच देकर के लूट लिया। हमको लगता है शुरुआत में बड़ा फायदे का सौदा है। तो संसार में हमारी जो ग्रीड है, जो लस्ट है, ये सब चीजें वास्तव में हमें फंसाती हैं। दुर्योधन एंड कंपनी इसी चीज में तो फंस गया, और भगवान श्री कृष्ण इस चीज में फंसने नहीं देना चाहते अपने भक्तों। जब युद्ध का निश्चित हो गया, अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण के पास जाते हैं, तो श्री कृष्ण से पूछता है दुर्योधन कि अब दोनों ही बैठे हुए थे, भगवान इंतजार कर रहे थे, दुर्योधन पहले आकर के बैठ गया था सर के पास, अर्जुन थोड़ा देर से आकर के बैठे हुए पैरों के पास बैठे, भगवान को पता था दुर्योधन आकर के बैठ गए, भगवान निद्रा का जस्ट नाटक कर रहे थे, आंखें खुला देखा सब, अर्जुन कब आए? वो सर के पास, मैं पहले आया, सर के पास से बोलता है, ओ अच्छा आप भी पहले आ चुके, लेकिन मेरी दृष्टि तो अर्जुन पर पहले पड़ी है, तो अर्जुन को लेकर के कहो अर्जुन, बोले प्रभु युद्ध की ठहर गई है, आप सारी दुनिया जानती है कि यदुवंशी कितने शक्तिशाली हैं, मैं आपकी सहायता के लिए है। तो कहता नहीं पहले मेरा मांगने का अधिकार है, नहीं नहीं पहले छोटो को मिलना चाहिए, दुर्योधन शांत हो जाओ। अर्जुन कहे नहीं नहीं पहले इन्हीं को दे दीजिए, कोई बात नहीं, ये भक्त होते उदार होते ले लेते, भगवान नहीं पहले अर्जुन को ही देंगे, छोटा है। दुर्योधन बेचारा दुखी हो, दाता पर निर्भर करते हो कि इसको क्या देते, भगवान अपनी ओर से ऑफर कर रहे और कह रहे अर्जुन मेरी एक और नारायणी सेना, नारायणी सेना का मतलब समझते हैं, हमारे लिए हमारे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो कोई पढ़ाई कर रहा हो तो इंजीनियरिंग की डिग्री नारायणी सेना की तरह है, मास्टर डिग्री पीएचडी डिग्री, ठाकुर जी से माता से प्रार्थना करते बस एक एग्जाम पास हो जाऊं बस, और आपसे कुछ नहीं चाहिए, पूजा अर्चना सब कुछ करते हैं कुछ पाने के लिए, नौकरी लग जाए, छोकरी आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए, ये सब किसकी तरह है हमारे लिए, नारायणी से। हमें तो ऐसा लगता है अर्जुन ने बहुत बढ़िया किया, कृष्ण को हम भी होते तो कृष्ण को ही मांगते लेकिन आज हमारे जीवन में जब घटनाएं आती है बोले कार लोगे या कृष्ण लोगे, नहीं नहीं कार ले लेंगे लेकिन थोड़ा कृष्ण के पास आकर के बना के भी रखेंगे, बिगड़े नहीं, बस सब जगह बोले बना के रखनी चाहिए। कृष्ण कहते नहीं ऐसा नहीं चलेगा, चूज करो या तो नारायणी सेना लो या मुझे लो, वो भी नेता लड़ाई नहीं लड़ूंगा। अर्जुन क्या कहते हैं प्रभु मैं तो आप ही को ग्रहण करूंगा, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भगवान अपनी ओर से दे रहे हैं, बिना प्रार्थना के दे रहे हैं। लेकिन अर्जुन ने क्या किया, मना कर दिया। और दुर्योधन क्या कह रहा है, कैसा बेवकूफ निकला, वो भी निहत्थे को ले लिया, देखो नारायणी से अब मैं जीत जाऊंगा, बड़ा खुश हो रहा चीजों को प्राप्त करके। और बाद में वो सारी की सारी चीजें उसके लिए क्या बनने वाली है, समस्या बनने वाली है। तो भगवान को तो खुश करने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता, वो तो पिता है हमारे, वो तो हमारा भला स्वयं से सोचते हैं, ऑफर देते हैं, चेक करते ये चाहते क्या है। लेकिन मेरा भक्त अगर होगा तो केवल मुझे ही लेगा, माम एव प्रपद्यन्ते, ही विल टेक ओनली मी। ऐसे हम किसी कोई पति बोलता है पत्नी आई लव यू, पत्नी बड़ी खुश हो जाती है, पति भी खुश हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने उसको ही बोला है, किसी और को नहीं बोला होगा ऐसा, और हमको ही बोला होगा। लेकिन जब ये आई लव यू ओनली तो उसको करोड़ गुना सुख मिलेगा, वास्तव में केवल मेरे से प्रेम करता है। कृष्ण कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अकेले ही ओनली मी इफ यू टेक द शेल्टर तब मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, केवल मेरे शरण में आ जाओ। ये भगवान की विशेषता है। तो एक व्यक्ति कुछ कामनाएं रख करके भगवान की आराधना कर रहा था, नारायण भगवान की, नारायण विष्णु राम कृष्ण एक ही हैं, उनकी आराधना कर रहा, देवता लोग अलग हैं, तो आराधना कर रहा है कुछ मिल ही नहीं रहा। किसी आदमी ने अरे तुम किसके पीछे पड़ गया, इससे अच्छा तो माता की आराधना करो। उसने छोटा सा कमरा था, भगवान की मूर्ति को ऊपर रख दिया और माता की मूर्ति को नीचे ला करके और सुंदर अगरबत्ती बढ़िया फ्रेग्रेंस वाली ला करके घुमाने लगे। वो इत्तेफाक से उसका धुआं ऊपर ही जा रहा है, ऊपर नारायण की मूर्ति लगी हुई है। एकदम इनोसेंट होकर के सोच रहा है, यार ये तो कमाल का आदमी है, लेना ही जानता है बस। अब धुआं भी मैं इनकी आरती कर रहा हूं, इस धुएं को ये सूंघ रहा है। बीच आरती में से बोले बाद में आरती घुमाऊंगा, पहले इसका इंतजाम करता हूं। बीच आरती में से गया जाकर के कॉटन निकाल के लाया, ठाकुर जी के नाक में कॉटन डालने लग गया। जैसे ही कॉटन डालने लग गया ठाकुर जी प्रकट हो गए, बोले अरे चतुर्भुज नारायण के रूप में शंख चक्र गदा पद्म कांपने लग गया। मैं तो नाक ही बंद कर रहा था, ये मेरा पता नहीं क्या क्या बंद करेंगे, गदा आदि है और क्या होगा पता नहीं, डर रहा है। अच्छा ठाकुर जी ने, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, बोले कमाल के आदमी हूँ। अब यहाँ प्रसन्न हो गए, मैं इतने समय से आरती पूजा सब कुछ कर रहा था, अब तो अप्रसन्न नहीं था। बोले तुमने मेरे को विश्वास के साथ आज तुमने एक पर्सन माना, आज तुमने मुझे क्या माना कि आई एम ए पर्सन, मैं साक्षात रूप से हूं जो कुछ कर सकता हूं, कुछ कर रहा हूं, तुम्हारी चीजों को ग्रहण कर रहा हूं। आज उस पर्सन मानने के कारण मैं प्रकट हो गया, तुम्हारी पूजा से नहीं। हम लोग भी पूजा अर्चना करते लेकिन पर्सन कहां मानते। भगवान कहते हैं तुम मुझे खाली पत्र पुष्प फल आदि दे दो बस, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तिया प्रेक्षति तदहम भक्ति उपरता हूँ अश्नामी प्रयतात्मना, मैं उसे ग्रहण करता हूँ। दुनिया में कौन है जिसको आप केवल पत्ता दे दो खुश हो जाए, फूल दे दो मात्र खुश हो जाए, थोड़ा सा पानी दे दो खुश हो जाए। भगवान कह रहे ये चीजें तुम मेरे को दे दो, लेकिन हम पर्सन मान के दे पाते हैं क्या, नहीं दे पाते। भगवान बड़े खुश हो गए। तो भगवान को तो पूजा अर्चना की आवश्यकता भी नहीं, वो तो हमारे क्या है, पिता है। तो तुम मेरे से कुछ मांगने की क्यों आवश्यकता समझते हो, निष्काम भक्त बनो, इस संसार से निकाल करके तुम हमेशा के लिए बाय डिफॉल्ट सेटल हो जाओगे भगवत धाम में, मेरे धाम में जाकर के। वास्तविक वस्तु भगवान की आराधना अगर विश्वास के साथ, अगर केवल हम उनको आदान प्रदान अर्थात खाली प्रेम करें बस, वो तो अपने आप को देने के लिए तैयार। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते और संसार में ही दुर्योधन एंड मेंटेलिटी से चलते हैं, जिसमें कि हाँ माता दुर्गा की आराधना भी कर लेंगे, साथ में कृष्ण से बिगाड़ेंगे नहीं, थोड़ा इनको भी यूज कर लेंगे। जैसे बहुत सारे लोग कंपनी बोलते हैं, आई यूज्ड बाय दिस कंपनी जस्ट लाइक ए कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता को लोग डालते हैं, बाद में वो उसको खा नहीं पाते तो निकाल के बाहर भी कर देते हैं। प्रश्न उठता बाहर क्यों किया जा रहा है, जब खाना ही नहीं डाल, खाना ही नहीं था तो डाला ही क्यों। बोले उसको पूरी तरह से फ्राई करके यूज कर लिया, अब उसमें कुछ बचा नहीं, अब क्या कर दो, बाहर भी कर दो। हम लोगों की वही स्थिति है, सबके साथ हम ऐसे ही करते, चाहे माता दुर्गा हो, माता गणेश जी हो, भगवान श्री कृष्ण हो, राम जी हो, बस समय समय पर यूज कर लेते हैं, बाद में निकाल करके साइड में कर देते हैं। जैसे कई बार हम लोग किसी के साथ मिलते हैं, गहरी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के बाद उसका नंबर वगैरह सेव कर लेते हैं और काफी देर, अच्छा आप ये काम करते हो, हाँ बहुत बढ़िया, उसका दिमाग में बैठ जाता है ये कहाँ रहता है, क्या काम करता है, सब चीजें। उसके बाद उसके साथ संपर्क टूट जाता है, फिर अचानक से एक साल बाद उसको कॉल जाता है या हमारे पास कॉल आता है किसी का, तो हम समझ, अरे इतने लंबे समय बाद याद किया, बोले कैसे याद किया, तो बस कैसा चल रहा है, बोले सब ठीक है, सारा समाचार डिटेल में, एक साल में जितनी घटनाएं घटी तो ये सारा बताते। हम बड़े खुश हो जाते, आखिरकार उसने एक साल बाद याद किया, कर तो लिया ना। फिर लास्ट में बोलते हैं उसको सब चीजें खत्म, यार एक काम था सब ठीक है लेकिन एक काम था, जैसे वो सुनता है एक काम था, तब जाकर को उसका सब पहले जितना भी फैमिलियर चीज थी सब खत्म हो जाते। ओ हाँ बता बता क्या काम था, मैं समझ गया किस लिए तूने फोन किया। हमारी वही दशा है, हम लोग पूरा एक साल तक तो भूल ही जाते हैं कि नवदुर्गा क्या होते हैं, जब एक साल के बाद आते हैं पूरा एकदम भाव के साथ, तपस्या के साथ सब कुछ दिखाते हैं, पूरी आराधना करते हैं। 9 दिन बीतने के बाद माता, एक काम था। कहां से था? बोले मन में था, मनोकामना थी। और बोले मनोकामना क्या कर दो, पूरी कर दो, उसके बाद 1 साल के लिए आप नदी में विश्राम करो, आपको विसर्जित कर देंगे। गणपति बप्पा मोरिया। अब इतना जल्दी नहीं, बहुत दिन हो गए। पुर्जा वर्षी लवकरिया, लवकर माने जल्दी, मराठी में कहते हैं पुर्जा माने अगले वर्षी, अगले साल। अब 1 साल के लिए आप चले जाओ, 1 साल के लिए लिस्ट में से गायब हो जाता है हमारा कॉन्टेक्ट। जब कहीं जाना होता है, यार जयपुर जाना था, वहां का कोई आदमी था, देखते हैं, हाँ जयपुर डाला, अरे यार चलो फोन करो, यार मैं जयपुर आया था, थोड़ा एक काम था। वो समझ जाता है कितना लालची व्यक्ति है, कितना स्वार्थी व्यक्ति है। तो संसार में हम लोग केवल इसी प्रकार से सबके साथ व्यवहार करते हैं, जिसमें माता आदि सभी देवी देवता आदि शॉपकीपर की तरह आपसे कुछ लेकर के वो आपको प्रदान भी करते थे, लेकिन आपको पता नहीं चलता, आप लालच में फंसते चले जा रहे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट, वो शत्रु मर जाए बस, मेरा ईर्ष्या है, और आप इस संसार में ट्रैप होते चले गए। ये माया की अद्भुत शक्ति है, अनंत शक्तियां हैं, और ये अलग अलग रूपों में प्रकाशित हो जाती है। ब्रह्मा जी की शक्ति के रूप में भी, ब्रह्मणी के रूप में भी, शिव जी की शक्ति के रूप में भी, माता दुर्गा के रूप में, भगवान विष्णु की शक्ति, लक्ष्मी देवी के रूप में, जो प्रायः हम आराधना करते हैं, लक्ष्मी पूजा आ गया बस, कितना लक्ष्मी पूजा के समय में दीपावली में आराधना करते, सब गहने पहने सब उतार देते हैं, और वो वाला फोटो लगाते जिसमें से कुछ टपकता रहता है, बोले इतना तो ढेर हमारी ओर से हमने कर ही दिया है, सुबह उठे तो डबल ट्रिपल हो जाए, साथ में गणेश जी की भी पूजा करते, लेकिन पता नहीं वो गणेश जी की आराधना किस लिए करते, लोगों को पता ही नहीं। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, गणेश जी की आराधना इसलिए सिखाई जाती है, इसका गलत उपयोग नहीं करना, मूर्ख भोगों में नहीं लगाना, इसलिए गणेश, बोले गणेश जी को पता ही नहीं क्या, ला के रख दू साथ में बस, प्रताप चले जा रहे हैं, इसका सदुपयोग करो भगवान की सेवा में जाकर के, उसे नहीं होता, और हम ट्रैप होते चले जाते। ये सारी शक्तियां हैं, लेकिन ये सब शक्तियां इस संसार में हमें कैद खाने में सेटल करने के लिए नहीं है। इन शक्तियों की भी शक्ति है जिसे राधा रानी कहते हैं, जिसे योग माया कहते हैं, जो अंतरंग शक्ति है, जो हमें यहां से निकालने के लिए मदद करने के लिए तैयार है। इसलिए दुर्गा की आराधना भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा, तुम भी कर लो मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए, भगवान की शरणागति के लिए हम किसी से भी सहायता ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। वह है अन्यथा हम इस संसार में 84 लाख योनियों में बिना हमारे वश के, हमें से कोई नहीं चाहेगा कुत्ता बनना, गधा बनना, सुअर बनना, लेकिन बनना पड़ेगा। 84 लाख योनियां इस संसार में हमें भटकने का रहना पड़ेगा। ये देव नेत्र से होता है, हमारा इच्छा नहीं होता कि हम किसी गरीब के घर में जन्म ले, हम तो चाहते हैं धीरू भाई अंबानी के ही हमारा जन्म हो, सब लोग हम अंबानी के घर में पैदा होना चाहते थे, लेकिन हमारा वश नहीं चलता। ये सब देवताओं के निर्देशन में, जो माता दुर्गा के निर्देशन में काम करते हैं, उनके अनुसार में संसार में फलों को भोगना पड़ता है, हम संसार में ट्रैप हो जाते। दूसरी ओर भगवान के जो भक्त होते हैं, जैसे कि जड़भर जी, बड़े महान भक्त हुए, भागवत में इनकी बड़ी सुंदर घटना है, आगे बढ़ो। इनके पिता ऋषभ देव जी थे, जो सारे संसार के राजा थे, जो भगवान के अवतार थे, उनके 100 पुत्र थे, 100 में से सबसे बड़े थे भरत महाराज। उन्होंने 100 के 100 पुत्रों को बिठाया और बिठा करके बोले, प्यारे पुत्रों, ये जो मनुष्य शरीर है ना, ये कुत्ते बिल्ली गधे सुअर की तरह भोगने के लिए नहीं मिला। नायम देह देह भाजा निर्लोके कष्टान कामान अरहताम विरभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र काये न सत्वम शुद्धये समात ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। प्यारे पुत्रों, ये शरीर हमें ब्रह्म सुख के लिए मिला है। जो संसार के भोगों के सुख, जो मल भोजी विष्ठा भोजी जो सुअर और कुत्ते पाते हैं, उनके पास भी ये सुख मिल जाता है जो संसार में हम भोगते हैं। ये कैसे, हम तो रसगुल्ले का भोगते हैं। आपको जो रसगुल्ला या गरम हलवा पाइन एप्पल हलवा खाने में जो आनंद आता है ना, सुअर को मल खाने में वही आनंद आता है, गरम गरम जो मल खाता है। आपको जो हॉट चिप्स वगैरह खाने में आता है ना, वही मल जब सूख जाता है ना तो क्रिस्पी हो जाता है, सुअर को वही मजा उसमें आता है। इसलिए कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ऋषभ देव कहते मेरे पुत्र, अगर तुम तो मेरी इस बात को समझो, जो मल खा करके जो सुख अवेलेबल है वो तुम अनाज खा करके सुख में लगे हुए, फ्लिकरिंग सुख के लिए। तुम्हें उससे ऊपर के सुख का सोचना चाहिए। वो सुख प्राप्त होता है तपस्या से। तपो दिव्यम पुत्र काय न सत्तम शुद्ध है समात, इससे तुम्हारी सत्ता शुद्ध हो जाएगी। ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, तुम्हें ब्रह्म सुख मिलेगा, भगवान का सुख मिलेगा जो कि अनंत होता है स्वभाव से। ये बात समझ करके जो भरत महाराज थे, उन्होंने संसार का त्याग करते हुए अपने जीवन को भगवान की आराधना में लगा दिया। लेकिन आराधना करते करते अचानक से उनका मन एक हिरण की ओर आकर्षित हो गया, जो छोटा सा बच्चा बह करके जा रहा था नदी में। उसको बचाने का प्रयास किया, बचाते बचाते उसमें अटैचमेंट हो गया। उसको बड़ा करने के बाद छोड़ देना चाहिए था, लेकिन छोड़ नहीं पाए, उसी में मन लग गया। और ये मन का संसार में अटकना ही यहाँ का सेटलमेंट है हमारा। आज हम विचार करें हमारा कितना मन लगा हुआ है संसार, हमारा मन के पीछे पीछे शरीर भी लगा हुआ है। इसलिए लोग कहते हैं मेरा मन डोले तेरा तन डोले, मन तन डोल रहा है संसार और भटकते रह जाते हैं संसार। लेकिन प्रहलाद ए जड़ भरत जी, ये भरत महाराज ने क्या किया, उसी हिरण की याद में अंत में शरीर छूटा और अगला शरीर हिरण का हुआ। फिर वो हिरण का शरीर भगवत आराधना में लगा, एक प्रकार से चिंतन में लगा। भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। शरीर छूटने के बाद फिर से एक ब्राह्मण के यहाँ शरीर मिला और ब्राह्मण के यहाँ शरीर लेकर को जड़ भरत बन करके व्यवहार कर रहे हैं। बोले मेरे को कुछ ना सुनाई देता है ना मैं कुछ बोलता हूँ। संसार में एक जड़ की तरह रहने लगे और भगवत चिंतन में डूबे रहते थे, निरंतर भगवत कीर्तन भगवत नाम में लगे रहते थे। और इस प्रकार से एक दिन राजा रघुगन को उन्होंने देखा, जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहा था पालकी में सवार होकर के। उसका एक कहार बीमार पड़ गया था, तो उसके सिपाहियों ने इनको देखा, हट्टा कट्टा आदमी यहाँ बैठा हुआ है खेत में, पकड़ करके ला करके इनकी पालकी में जोड़ दिया। ये चले गए जोड़ के, भक्त विनम्र होते। लेकिन जब चलने लगे तो एक एक चींटी को भी देख देख करके चलने, इसलिए कभी लंबा पैर रखते हैं कभी थोड़ा पैर रखते हैं। सारी पालकी हिलने लगी, राजा रघुगन डांटने लगे, तुम बहुत दुबले पतले लग रहे हो, इस कारण से तुमसे चलना बहुत कठिन हो रहा है, टोंट मार रहा था। आखिर में इन्होंने नीचे से ही कहा कि राजन, आत्मा न दुबली होती है न मोटी होती है, आत्मा की कोई आयु नहीं होती, आत्मा शाश्वत वस्तु है। ऊपर से फिर इसने झाड़ लगाया, बोले तुम जानते नहीं हो मैं राजा हूँ, मृत्यु दंड दे दूंगा। ये हंसने लग गए। राजा बड़ा स्मार्ट था, राजा ने देखा इसको मृत्यु का भय नहीं है। तुरंत वो पालकी से नीचे उतरा और नीचे उतर के प्रार्थना करके ज्ञान की आराधना करने लगा, आप मेरे को ज्ञान दीजिए, मैं शिवजी के त्रिशूल से नहीं डरता, यमराज के यमदंड से नहीं डरता, लेकिन मैं भक्तों के अपराध से डरता हूँ। भक्तों का अपराध बड़ा भयानक होता है, इसलिए आप मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपके ऊपर बहुत अत्याचार किया। उन्होंने उसको ज्ञान दिया और अंत में उस ज्ञान को लेकर के पूरी तरह से शरणागत हो गया और उनका शिष्य बना। यही जड़ भरत जी बिंदास रहते हुए अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, जैसा मिल जाता था जहां मिल जाता था। इस संसार से कोई अटैचमेंट नहीं, संसार के भोगों की कोई लालसा नहीं। इस संसार में बोले थोड़े समय के मेहमान हम निकल जाएंगे, भगवत आराधना में लगे रहते थे बस। उसी समय माता दुर्गा के उपासक कुछ लोग थे जो चोर थे डाकू थे, उन्होंने बलि देनी थी, नर बलि देनी थी। उस समय बलि प्रथा थी। देखा घूमते घूमते, अरे ये तो बड़ा सुंदर है, हट्टा कट्टा है, माता तो बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। बलि चढ़ाने के लिए इन्हीं को पकड़ लिया, पकड़ करके ले जाने लगे और ये चलने लगे। इसको कहते हैं सरेंडर्ड सोल, हैविंग फुल फेथ इन कृष्णा, दैट व्हाटएवर कृष्णा हैज द डिजायर आई हैव टू फुलफिल दैट। जाई विद राखे राम तही विद राम। अपना भजन करते हैं बस। सीता राम भजो राधे श्याम भजो, सीता सीता राम भजो राधे श्याम भजो, सीता राधे श्याम। इनको डर नहीं लग रहा है, इसको कहते भक्त। भक्त जानता है माया देवी जो संसार को चलाती है, जो भगवान की पुलिस है, मैं भगवान के नियमों का पालन कर रहा हूं तो ये मुझको दंडित नहीं करेगी। आई एम टोटली प्रोटेक्टेड। और कौन सा स्थान है जहां माया का क्षेत्र नहीं है, इसलिए बिंदास बोले लेके चलो तो चलो, लेके कोई बात नहीं। और बाकी यहां से जाना तो है ही, तो मृत्यु से क्यों डरना। बोले मृत्यु तो बड़ी क्रूर होती है, मृत्यु से क्यों नहीं डरना चाहिए। बोले भक्त नहीं डरता। भक्त क्यों नहीं डरता मृत्यु से। बोले एक जीव जब मरता है तो उसको 40,000 भिक्षु काटते, इतना भयानक कष्ट होता है मौत के समय। अरे भैया आज चवरनी अटन्नी 1 रुपया भी गिर जाता है तो दुख लगता है, और जब सब छोड़ के जाना पड़ेगा तो कितना बड़ा दुख होगा। और जाना तो है, इट इज एज श्योर एज डेथ, श्योरिटी इज कंपेयर्ड विद द डेथ ओनली। कोई संसार में ऐसा नहीं है जो घटना हो या ना हो, लेकिन ये घटना तो अवश्य होगी। तो भक्त जान में जाना तो है, तो डरना क्यों। बोले जाना है और डरावनी स्थिति में से जाना है, फिर क्यों नहीं डरते। बोले भक्त जब भक्त बन जाते हैं तो उसकी मृत्यु अलग तरह की होती है। जैसे बिल्ली मुंह से दांतों से चूहे को पकड़ती है तो उस चूहे की हालत क्या होती है, उस मुंह और दांत से उसका टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। वही बिल्ली उसी मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती है और बच्चे को कैसा लगता है। अपने बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सॉफ्ट होता है उसका बच्चा, छोटा सा होता है, चूहे के जैसा ही होता है जब पैदा होता है, और उसी दांतों से पकड़ करके ले जाती है और उसको ऐसा लगता है कि मैं माँ की छाती से लगा हुआ, मोस्ट सिक्योर प्लेस। इसलिए भक्त डरता है। इसलिए जड़ भरत जी चले जा रहे हैं, वो खींचना भी नहीं पड़ रहा उनको, बोले हम तुम्हें बलि ले जाने के लिए ले जा रहे हैं, ले चलो कोई बात नहीं। लेकिन संसारी लोग ऐसे भक्तों को समझ नहीं सकते। एक बार एक भक्त नाव में जा रहे थे और अचानक से तूफान आ गया, तो नाव में जा रहे हैं तूफान आ गया तो लहरें बड़ी तेज तेज चलने लग गई। अब तो पानी नाव के अंदर लहरों का घुसने लग गया, सब लोग घबराने लग गए। जो नाविक था बोले भाई शांत हो जाओ, चिल्लाओ मत, सब इधर उधर हिलने डुलने, हिलो डुलो मत, मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरे वश में कुछ है नहीं, लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूँ, शांत तो रहो कम से कम, मरना तो निश्चित ही लेकिन शायद बच जाए। आप लोग जितना उत्पात मचाओगे उतनी जल्दी नाव डूब जाएगी। इतनी देर में क्या देखा, जिस महात्मा जी बैठे हुए थे शांत बैठे हुए थे, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, सब लोग आश्चर्य से कैसा आदमी है। थोड़ी देर बाद क्या देखा, जब लहरों का पानी और तेज अंदर आने लग गया, इनके पास एक कमंडल था, उसको लेकर के बाहर से पानी लेके नाव में फेंकने लग गए। तो सब लोग उनका और दिमाग ठनक गया, पहले तो ये अजीब हरकत कर रहा था, चलो शांत बैठा था, हमें समझदार लग रहा था, लेकिन अब इसकी हरकत कुछ अलग ही हो गई। अब तो ये बाहर से नदी में से पानी नाव में फटाफट फटाफट, जितनी तेज तूफान चले, जितना तेज पानी लहरों से आ रहा है, उससे भी जल्दी 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 पानी को डाल रहे कमांडर से। आई और जो चिल्लाने लगे, इन पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। इतनी देर में अचानक से तूफान शांत हो गए, लहरें आना बंद हो गई। अभी पहले तो अपना ही देख रहे थे, उनकी और क्या देखे, खाली देख ही रहे थे मात्र, भगदड़ मची हुई थी। अब जब तूफान शांत हो गया, नाव भी शांत हो गई, अभी कमंडल से पानी पार फेंकने लग गए, सब लोग चिल्लाने लगे, ये देखो क्या नाटक हो रहा है, पहले तो पानी डाल करके डूबो रहा था, फेंको इसको बाहर पकड़ करके एकदम से, धूर्त एक नंबर का नाटक खो रहे, ऐसे खूब उसको चिल्लाने लगे। इनके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है, चुपचाप के पानी फेंक रहे। अरे देखते क्या है, इस आदमी का कोई भरोसा थोड़ी, पागल है ये तो पूरी तरह से, इसको बाहर फेंको। चुपचाप शांति के साथ बोले भैया क्या समस्या आप लोगों को? बोले अभी समस्या बहस और कर रहा है, तेरे को समस्या बताया अभी, समझ कहां तुम्हारे अंदर? ये कोई हरकत करने लायक थी? पानी बाहर से तुम अंदर भर रहे थे? बोले भैया मैं तो ठाकुर जी की इच्छा में अपनी इच्छा मिला रहा था। मैंने देखा जब ठाकुर जी की इच्छा थी इसमें अंदर पानी डले तो मैं अपनी कमर से संयोग कर रहा था। दिस इज कॉल्ड सरेंडर, दिस इज कॉल्ड फुल्ली डिपेंडेंस ऑन कृष्ण, इन विच वी हैव 100% फेथ दैट कृष्णा इज भुवन मंगलपति। भुवन मंगला प्रभु भुवनेर पाके, भुवन पति और मंगलकारी है, आपका नाम ही मंगलकारी है। मंगल भवन नाव को डुबोने का प्लान अमंगलकारी कैसे हो सकता था? इसलिए अगर मेरी मृत्यु भी थी इसमें तो मैं तो भगवान की इच्छा के अनुसार मरना चाह रहा था, इसमें कौन सी नई बात थी? कोई बात नहीं, इच्छा के अनुसार मर जाएंगे। इसलिए भैया मैं तो सहायता कर रहा था भगवान की इच्छा। अच्छा भगवान की इच्छा दूसरी हो गई, शांत हो गया सब चीजें, तो मैं उसमें भी मिला रहा हूं, अभी बाहर निकालो पानी को। ये भक्त होते हैं उनको पहचानना बहुत कठिन हो जाता है। संसारी भौतिक दृष्टि से आप नहीं समझ सकते। जड़ भरत जी ऐसे ही थे, बोले तुम मारने के लिए ले जा रहे हो, चलो कोई नहीं, मैं वैसे नियमों का पालन करता हूं, अब बाकी भगवान की जैसी इच्छा, मुझे तो भजन करते हुए जो जैसी स्थिति में रखे वैसे रहेंगे। सीताराम भजो राधे श्याम भजो, सीता राधे श्याम जग से जाना, भयो दुनिया मुसाफिर खाना, जग से जाना जानो, जग से जाना भयो दुनिया मुसाफिर खाना, जग से जाना दुनिया मुसाफिर। कोई जग में रहना रहेगा, कोई जाना एक रोज सबको पड़ेगा, जाना एक रोज सबको जिसने धारा जन्म उसने होना खत्म, जिसने धारा जग से गाना काल ने सबको एक दिन खाना, जग से गाना काल ने सबको एक दिन खाना। इसलिए सीताराम भजो राधे श्याम भजो, सीताराम भजो राधे श्याम भजो, सीताराम भजो राधे श्याम भजो, सीताराम। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Bolo, aawaz se kaho, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. देवी के भक्त डाकू लोग थे, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए बलि चढ़ाते थे, इनकी गर्दन को इनको खिला पिलाने के पश्चात, नहला धुलाने के पश्चात, अच्छा श्रृंगार आदि करने के पश्चात, बलि से पहले खिलाया पिलाया जाता है ना बड़ी, वो तो शादी से पहले भी खिलाया पिलाया जाता है बड़ी हरी वे, वो भी एक बलि है अगर भोगों की दृष्टि से देखा जाए तो, लेकिन शास्त्र यज्ञ के रूप में उसको प्रस्तुत करता है। वो एक यज्ञ है, विवाह यज्ञ है, जिसमें कि गृहस्थ आश्रम में कोई व्यक्ति प्रवेश करता है, लेकिन आश्रम की सिद्धांतों को न जानने के कारण उसे वो व्यक्ति गृहस्थ होटल बना देता है। आश्रम में तो आराधना होती है, दोनों मिलकर के परिवार के साथ आराधना करना सीखते हैं, उसे गृहस्थ आश्रम कहते हैं। आज प्राय संसार में लोग गृहस्थ होटल बना देते हैं और गृह मेदी बनकर के नरक में जाते हैं। तो उन दुष्टों ने क्या किया, इनको गर्दन नीचे झुका दी और प्रहार करने के लिए तत्पर हो गए तलवार के साथ। उसी समय माता काली जिसको वो चढ़ाने के लिए जा रहे थे, मूर्ति फटी। आप देख रहे हो जड़ भरत जी बीच में माला लेकर के खड़े हैं और पीछे काली माता की मूर्ति है, और वो मूर्ति को माता ने तोड़ दिया, और मूर्ति को तोड़ करके उसके अंदर साक्षात रूप से प्रकट हुई, और प्रकट होकर के जो उनके अपने खुद के भक्त थे तथा कथित, क्योंकि भक्त अपराध कोई सहन नहीं कर सकता, माता ने देखा ये लोग तो मेरे प्रभु की आराधक को मारने जा रहे हैं। उसी समय उन्होंने अपने ही आराधकों के गले काट दिए और उनका खून का पान करने लगी, और उनके मस्तकों को पकड़ करके उनके साथ गेंद की तरह खेल कर। इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनता है वो माता का भी कृपा पात्र बनता है। उसको रामायण में भी कहा है, जापे कृपा राम की होई, जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे हर कोई, तापे कृपा तापे कृपा करे हर कोई, तापे कृपा करे हर कोई। संसार में 99.99% जो उपासक मिलते हैं इस प्रकार के मिलते हैं, बस अब आपका काम खत्म हो गया, अब ये गेट लॉस फ्रॉम हियर, अब आपको पानी में डुबो दिया जाता है क्या उसे प्रेमी कहेंगे? उसे उसी मोबाइल की तरह यूज करने वाला नहीं कहेंगे? एक साल बाद याद आई इसी उसे आराधक कहेंगे? प्राय संसार में सभी आराधक ऐसे ही देखे जाते हैं, कुछ एक आराधक होते हैं जो प्रेम के साथ आराधना करते हैं, उनको लाभ मिलता है, और अंत में उनको भगवान की भक्ति की ओर सभी देवी देवता भी गाइड करते हैं, क्योंकि सभी भगवान के ही सेवक हैं, भगवान के ही दूत हैं। जिसको के वर्णित किया गया है, एक बार की घटना से हम समझ सकते हैं, बंगाल में एक भक्त था इन्हीं का, माता दुर्गा का, उसका नाम चंडीदास था, माता चंडी की उपासना करता था, बड़ा सुंदर उसने मूर्ति आदि स्थापना करके बहुत सुंदर घर में गार्डन आदि, रोज पुष्प आदि श्रृंगार आदि के साथ बड़ा अद्भुत रीति से उपासना करता था। हुआ क्या, उसका छोटा भाई था, वो भगवान नारायण की उपासना करता था, शालिग्राम शिला रखी हुई थी, उसने शालिग्राम जी की सेवा करता था। शालिग्राम जी की सेवा बड़ी सिंपल है, थोड़ा सा एक तुलसी का पत्ता चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, उसी से शालिग्राम जी प्रसन्न हो जाते। छोटा भाई था और ये अपने आप में अभिमान रखता था, तो इसने अपने छोटे भाई को घर से बाहर निकाल दिया था। वो दूर बेचारा बाहर कुटिया बना करके रहता था। तो एक दिन उसकी इच्छा हुई, जब निकला बाहर घर से, देखा कि आज मैं भी थोड़ा भगवान को फूल चढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन हुआ क्या, फूल थे नहीं। भाई के मकान में देखा तो सुंदर गार्डन, उसमें बड़े सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। इसने वहीं से बैठे बैठे मन से ही उन फूलों का चयन किया आंखें बंद करके, और मन से ही फूलों को चयन करते हुए मन से ही भगवान नारायण शालिग्राम जी को चढ़ा दिया। मन से थोड़ी रोकेगा, अन्यथा घर जाएंगे तो लड़ाई करेगा। होता है, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, इंजीनियरिंग करते थे, हम भी फूलों की चोरी करते थे भगवान को सुंदर श्रृंगार करने के लिए। हमारे भक्त लोग सुबह 4:30 बजे निकल जाते थे लोगों के बड़े बड़े बंगलों में, दीवार कूद कूद के फूल तोड़ के लाते थे। कई कई बार लोगों को पता चल जाता था, वो गाली देते हुए पीछे भागते थे। तो इन्होंने तो मन से ही झगड़ा ना हो इसके कारण मन से ही तोड़ के भगवान को चढ़ा दिया। और फिर ही आराम से उठा, माता दुर्गा का उपासक और चंडी देवी का दास, चंडी दास, और इसमें जाकर के माता को पुष्प अर्पण करने चला। इतनी देर में माता साक्षात रूप से दर्शन देकर के प्रकट होकर के उन्होंने हाथ आगे बढ़ा दिए और उन पुष्पों को अपने हाथों में ले लिया चरणों में चढ़ने के बजाय। बोले, आज मैं तुम्हारे ऊपर बड़ी प्रसन्न हूँ। बोले, आज कैसे प्रसन्न होंगे, आज मैंने ऐसा, आज तुमने जो मेरे को ये पुष्प चढ़ाए ना, मेरे लिए बड़े आनंद की बात है। बोले, आज क्या मैं रोज ही पुष्प चढ़ाता था। बोले, नहीं, ये पुष्प विशेष। बोले, ये कैसे। बोले, ये महाप्रसाद है। बोले, कैसे। बोले, ये तुम्हारे भाई ने पहले मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्ण को चढ़ा दिया गया है और उनका चढ़ा हुआ जो प्रसाद है आज मेरे को भाग्य से प्राप्त हो रहा है, इसलिए मेरा सौभाग्य है। ये भगवान श्री कृष्ण की आराधना को सिखाते हैं कि तुम भी इनकी संगति में जाकर के भगवान आराधक बन जाओ। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी हेशम गुणमयी मम माया दुरतया। तुम माया के अंतर्गत उपासना करने से भी, जेलर की उपासना करने से भी ये जेलर इतने वफादार हैं कि आपको छोड़ने वाले नहीं, यहां से आप नहीं निकल सकते। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाता है, कैसी शरण में, 100% भगवान की इच्छा समझ करके सारे कार्य को कर लेना चाहिए। महाराष्ट्र में नामदेव जी भक्त हुए, उनकी कुटिया में आग लग गई। गांव के लोग कुटिया में आग लगी हुई देखकर के बाल्टियां ले लेकर के भागे और नामदेव जी का मूर्ति था, उस मूर्ति को निकाल के कुटिया से बाहर ले जा करके, और उन्होंने इधर उधर जो एक कोने में आग लगी थी, दूसरे कोने में रजाई गद्दे वगैरह पड़े थे, उस रजाई को ला के आग में डालने लग गए। गांव के लोग आए, बोले, देखो, हम तो बाल्टी से पानी बुझाने के लिए लाए और ये रजाइयां डाल रहा है आग में, लगता है आग किसने लगाई है, इसने लगाई है। और भगवान मुस्कुरा रहे, बोले, नामदेव, ये क्या कर रहे हो तुम। बोले, कर क्या रहा हूं प्रभु जी, आपकी इच्छा है आग लगवाने की तो मैं तो उसमें सहायता कर। बोले, मेरी इच्छा, बोले, आपकी इच्छा के बिना अग्निदेव की क्या मजा जो मेरी कुटिया में लग जाते हैं, आपकी इच्छा से ही, सेंशन से ही तो सब कुछ हो रहा है, इसलिए आपकी इच्छा तो मैं तो रजाइया भी डाल करके उसको आपको और तीव्र कर रहा हूँ। गांव के लोग भाग गए बुझाने के बजाय, वो भी दो चार चीजें डाल करके चले, चला हुआ है। अब नामदेव जी चौरे में खाली में मैदान में बस बैठे हुए। इतनी देर में ठाकुर जी आए, एक छान छाने वाले व्यक्ति का कारीगर का रूप लेकर के, बोझा पटका नीचे, नामदेव जी अपना कीर्तन कर। बोले, भैया, तुम्हारी छान छा दूं क्या। बोले, मेरे पास देने के लिए तो कुछ है नहीं। नहीं, तुम्हारा कीर्तन ही बहुत बढ़िया लग रहा है, मैं इसी से आपकी छान बना दूंगा, आपकी कुटिया बना दो। भाई, बनाया, भगवान को कितनी देर लगे। अच्छा नामदेव जी, मैं जा रहा हूँ, बन गया आपका। वो कीर्तन में मगन थे, आंखें खुला, देखा ऐसी दिव्य कुटिया जिसमें कि पुष्पों के पर्दे लगे हुए, ऐसे दिव्य पुष्प जो कभी मर जाते ही नहीं, अंदर ऐसा तेज निकल रहा हूँ पुष्पों से। गांव के लोग आकर के हैरान हो, भैया, ऐसी छान छाने वाला, कुटिया बनाने वाला कौन कारीगर है, हमें भी बताओ क्या लेके बनाया। बोले, भैया, वो तो कीर्तन लेके ऐसी कुटिया बनाता है, लेकिन पहले कुटिया में आग लगा देता है। तो ये बात हमें समझनी होगी कि भगवान श्री कृष्ण पहले ठोक बजा करके बोलते हैं, नारायणी सेना चाहिए या मैं चाहिए, वो भी कैसा? नियत्था। सोचना नहीं कि मैं लड़ाई लड़ूंगा, हाँ रथ तेरा जरूर हाँ टूंगा। ये परीक्षा है। और संसार में लड़ाई लड़ने वाले अगर हमें मिल भी जाए ना, तो क्या हमें बचा लेंगे? संसार की कोई विषय वस्तु हमारी रक्षा नहीं कर सकती। कभी भी ध्यान रखना चाहिए। कितना भी धन दौलत नौकरी चाकरी संसार की विषय वस्तुएं जिनको लेकर के हम बहुत चिंतित रहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, प्राप्त करना चाहते, भगवान से नहीं मिलता तो देवी देवताओं के शरणागत हो जाते। लेकिन वहां से चीजें मिल तो जाएंगी आपको शॉपकीपर की तरह, लेकिन वो आपकी रक्षा, बल्कि आपके अंदर लोभ पैदा कर देंगी, आपके अंदर ईर्ष्या पैदा कर देंगी, आपके अंदर क्रोध पैदा कर देंगी, आपके अंदर दंभ पैदा अहंकार पैदा कर देंगी। वो सब चीजें आपको संसार में एक बार नहीं अनंत बार तक मरने के लिए मजबूर कर देंगी। इसलिए हमें किसकी शरण लेनी है? होलसेलर भगवान श्री कृष्ण जो हमारे पिता हैं, जो थोड़ी सी प्रेम पूर्वक भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। बस वो ये देखना चाहते हैं ये चाहता क्या है। हमें संसार की विषय वस्तुओं का तो त्याग करना सीखना ही होगा। कुंती माता कहती है भगवान नमो अकिंचन वित्ताय, अकिंचनों के भगवान भक्त होते हैं, और ऊपर से हमारी इच्छाओं का भी त्याग करना। केवल एक इच्छा, मुझे लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, मुझे लाख ना। कोई बोलेगा नहीं कि हम सबको चाहिए ना, आवाज कोई नहीं निकालेगा। वो भी ठाकुर जी के सामने बोले अगर भगवान ने सीरियसली ले लिया तो। मुझे लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, थोड़ा जोर से बोल दो भगवान तक पहुंच जाएगा। अरे झूठी बोल दो कोई बात नहीं, और आपके पास कमी नहीं रहेगी, आखिर में जीत पांडवों की होगी, चिंता मत करो। मुझे लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, मुझे लाख ना। हमें कृष्ण जी हमें श्याम जी हमें श्याम जी हमें कृष्ण जी बस तुम्हारा प्यार चाहिए, हमें कृष्ण जी बस तुम्हारा प्यार चाहिए, हमें कृष्ण जी बस तुम्हारा प्यार चाहिए, हमें कृष्ण जी बस तुम्हारा प्यार चाहिए। अगर भगवान का प्रेम मिल गया ना तो फिर सब आ जाएगा, सबका प्रेम मिलेगा हमको। बोले सबका कैसे मिलेगा? अरे सब जितने भी हैं सब भगवान के ही टोन्स हैं, भगवान सबके हृदय में बैठेंगे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कौन सा ऐसा हृदय है जहां भगवान नहीं बैठे होंगे? इसलिए यहां हम देख सकते हैं भगवान सबके हृदय में है। चापे कृपा तापे कृपा करे हर कोई, देवता मनुष्य गंधर्व किन्नर चानर राक्षस पशु पक्षी सब कृपा करते उसके ऊपर, कोई उसका आहित नहीं कर सकता। ऐसी शरणागति 100% वाली होनी चाहिए। हमारी शरणागति मतलब वाली है वो है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है, इस जेलर तत्व को दुर्गा तत्व को समझते हुए, आप सभी ने इसको समझते हुए कृष्ण की शरणागति लेनी चाहिए। इनकी भी आराधना कर सकते हैं, हमें भगवान की ओर बढ़ने में सहायक बने। जैसे कि अर्जुन ने माता दुर्गा की आराधना किया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें विजय श्री के लिए उनका आशीर्वाद जरूरी है, आशीर्वाद सबका लेना है। सबसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करना सीखना चाहिए। भक्ति किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। अगर हम उनके नियमों को पालन करेंगे तो यही पुलिस बिना रिश्वत के ही हमारा फेवर करेगी, हमें निर्भर बनाएगी और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अगर श्री कृष्ण के चरणों से तेरा प्यार हो जाता, अगर श्री कृष्ण के चरणों से तेरा प्यार हो जाता। आपने करना नहीं है ना, करना है बोलो फिर। अगर श्री कृष्ण के चरणों से मेरा प्यार हो जाता, अगर श्री तो भव सागर से मेरा बेड़ा पार हो जाता, तो भव सागर से मेरा बेड़ा पार हो जाता। अगर हमारा कृष्ण के चरणों में ऐसा प्यार हो गया ना, हमारा बड़ा पार हो जाएगा। हमें अर्जुन की तरह भक्त बनना है। अर्जुन कंफ्यूज थे, लेकिन जब भगवत गीता को सुना वो पूरी तरह से समर्पित हो गए। अब वही करूंगा जैसा आप कहें। हम सबको इस सिद्धांत को समझना है। ये ऐसे ही नहीं हम कर पाएंगे, इसको समझ के कर पाएंगे। समझेंगे कब? जब हम सत्संग करेंगे, और सत्संग के साथ साथ हमारा चित्त जो पहले से गंदगी से भरा पड़ा है उसको साफ करेंगे। वो भगवान के इस मंत्र जब से होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, फिर हम निश्चिंत हो जाएंगे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार